नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। गाजा में इसराइल के हमले में 93 फिलिस्तीनी मारे गए। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने विद्यार्थियों के दबाव में त्यागपत्र दिया। और पेरिस ओलंपिक में 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में किर्गिस्तान की शीर्ष वरीयता प्राप्त आयपेरी मेदकेजी ने भारत की रितिका हुड्डा को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश और केंद्र सरकार केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद आज वायनाड में समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने राहत कार्यों में सहायता के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बनकर के आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा।
श्री मोदी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से राज्य की आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत ज्ञापन भेजने का आग्रह किया, जिस पर उचित विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से भूस्खलन प्रभावित बच्चों के भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने को भी कहा। उन्होंने वर्ष 1979 में मोरबी बांध दुर्घटना के अपने व्यक्तिगत अनुभव का स्मरण किया। बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य के मुख्य सचिव डॉ वी वेणु ने प्रधानमंत्री को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्र से आवश्यक सहायता के बारे में जानकारी दी। भारत और तिमोर लेस्ते ने आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये हैं प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन तिमोर लेस्ते के बीच सहयोग, अधिकारियों और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर सहयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता ने दिल्ली में राष्ट्रपति पैलेस में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द होर्टा शो में भाग लिया, जो राष्ट्रपति होजे रामोस होर्टा द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक सार्वजनिक बातचीत थी, जहां दोनों राष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति मुर्मू के साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने के बारे में बात की। बाद में सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय प्रवासी जिस देश में वे रहते हैं उसकी विकास कहानी का हिस्सा बनते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में राष्ट्रपति होर्टा ने पिछले 20 वर्षों में 400 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए भारत की सराहना की और सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत का समर्थन मांगा। जहां भारत ने आने वाले महीनों में तिमोर लेस्ते के आसियान में शामिल होने का स्वागत किया, वहीं तिमोर लेस्ते ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे के प्रति अपना समर्थन दोहराया। तिमोर लेस्ते से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार भारत और मालदीव तथा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति वचनबद्ध है। डॉ जयशंकर 3 दिन के मालदीव दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज्जू और रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा हितों के बारे में चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने मालदीव के 28 द्वीपों में जल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। भारत के विदेश मंत्रालय और नेपाल के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने समझौता किया है। इससे नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता दी जा सकेगी। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के निदेशक ए अरुणाचलम ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुनाल उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत नेपाल में विकसित स्वदेशी उपग्रह है। नेपाली अंतरिक्ष स्टार्टअप एपीएन ने इस उपग्रह के डिजाइन और निर्माण में नेपाली विद्यार्थियों की सहायता की है। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल की विदेश सचिव सीवा लम्साल के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर कल नेपाल जाएंगे। विदेश सचिव की यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय संपर्क की परंपरा के अनुसार हो रही है। इस यात्रा से पता चलता है कि भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को महत्व देता है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। हाल के वर्षों में नेपाल में बुनियादी ढांचे और संपर्क की प्रमुख परियोजनाओं में निरंतर गति के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल, फलों के छिलकों और बांस से एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन लाभदायक और व्यवहारिक व्यवसाय है। श्री शाह ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा बढ़ा रही है।
2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है कि वो लक्ष्य को हम 25-26 तक ही सिद्ध कर लेंगे। लगभग 5,000 करोड़ लीटर इथेनॉल पेट्रोल की बिक्री है और इसमें इथेनॉल की आवश्यकता 1,000 करोड़ लीटर हो जाए।
श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की गई है। इससे एथेनॉल निर्यात के अवसर पैदा होंगे और सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। गजा में इजरायली हमले में 93 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार ये हमला तब किया गया जब पूर्वी गजा के शहर के अल तबीन परिसर में लोग सुबह की नमाज पढ़ रहे थे। इजरायल ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमास इस स्थान पर सक्रिय था। इजरायल डिफेंस फोर्सेज IDF ने पुष्टि की है कि ये हमला इमारत में स्थित नियंत्रण केंद्र के भीतर हमास आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने न्यायपालिका में सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दिया। बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय कार्य सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र कानून मंत्रालय को मिल गया है और इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले आज त्यागपत्र देने की घोषणा की थी। विद्यार्थियों, वकील और अन्य लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश से त्यागपत्र देने की मांग की। कुर्स्क में यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने सीमावर्ती क्षेत्रों कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रांस्क में आतंकवाद रोधी कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के अनुसार घरों को खाली कराने, विशेष क्षेत्रों में परिवहन को सीमित करने, संवेदनशील स्थानों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और टेलीफोन तथा अन्य संचार साधनों की टेपिंग करने सहित राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी समिति द्वारा कई उपाय किए गए हैं। भारतीय वायुसेना की टीम मलेशिया के क्वांतान में उदर शक्ति 2024 अभ्यास में सफल भागीदारी के बाद आज स्वदेश लौट आई। इस महीने की 5 से 9 तारीख तक यह अभ्यास मलेशिया की रॉयल वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं राजश्री।
भारतीय पहलवान रितिका हुडा का पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में सफर दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। राउंड ऑफ 8 में रितिका ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को 12-2 के एक तरफा स्कोर से हराया, जिससे उनकी पदक जीतने की उम्मीदें और भी मजबूत हो गई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल में उनका सामना कजाकिस्तान की एपरी मेडे से हुआ, जहां मुकाबला बहुत कड़ा रहा। दोनों पहलवानों ने अपनी पूरी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया। मुकाबला 1-1 के स्कोर पर समाप्त हुआ, लेकिन तकनीक तकनीकी अंकों के आधार पर एपेरी मेडे को विजेता घोषित किया गया।
पेरिस ओलंपिक में खेल पंचायत न्यायालय भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर आज रात अंतिम फैसला सुनाएगा। अंतिम फैसला आज रात 9:30 बजे के आसपास घोषित होने की संभावना है। अपनी अपील में फोगाट ने संयुक्त रजत पदक का अनुरोध किया है, क्योंकि 50 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद उनका वजन अधिक पाया गया था। वरिष्ठ वकील हरीश सालवे ने खेल पंचायत न्यायालय में उनके मामले का प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलवान अमन सहरावत से फोन पर बात की है और पेरिस ओलंपिक में अपना पहला कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलवान सहरावत का समर्पण और दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर गर्व है। सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को हराकर कांस्य पदक जीता था। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री ने आज गुंटूर जिला कलेक्ट्रेट डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉ चंद्रशेखर ने लोगों से सोशल मीडिया पर भी इस संदेश को व्यापक रूप से फैलाने का आग्रह किया। जाने माने अभिनेता विजय कदम का आज मुंबई में निधन हो गया। 67 वर्षीय अभिनेता पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे। कदम ने कई मराठी नाटकों, टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अभिनय किया। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने आज मुंबई आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया। वे 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। श्री सहगल ने दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले आज सुबह उन्होंने आकाशवाणी के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रमों का निर्माण करते समय श्रोताओं की रुचि पर विचार करने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है। बेंगलुरु से मैसूर तक भाजपा और जनता दल सेक्युलर के विरोध मार्च के समापन पर मैसूरू में श्री जोशी ने कहा कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA भूमि आवंटन घोटाले में श्री सिद्धरमैया पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के एक आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पताल में एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। गजा में इसराइल के हमले में 93 फिलिस्तीनी मारे गए। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने विद्यार्थियों के दबाव में त्यागपत्र दिया। और पेरिस ओलंपिक में 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में किर्गिस्तान की शीर्ष वरीयता प्राप्त आईपेरी मेदित केजी ने भारत की रितिका हुड्डा को हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।